दूसरे को इस तरह दिया बात को कर दिया कि कहने से कुछ भी देखता नहीं। पहले से ये बात नियम से निकल के बता देना नहीं है एक व्यापी हो बराबर विद्वान पंडित आ जाते हैं यही बैठा हुआ है कि बात कर जाती
जैसे परमधाम में आत्मा रहती है परमात्मा रहता है
तो परमात्मा के घर में आत्मा ऐसे ही प्रजाति का ब्रह्मा भी आत्माओं का घर है। क्योंकि बीजों का आत्माओं का उपगम खुशी से होता है, ब्रह्मा से ही सारे मनुष्य शक्ति की पैदाइश मानी जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा दो हैं, एक प्रजापिता उसको कहते हैं पिता और एक है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। जब हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो उससे साबित होता है कि दोनों ही हैं। प्रजापिता पहले और ब्रह्मा बाद में। सिर्फ ब्रह्मा जब कहते हैं तो माँ की तरफ विचार है, सारी प्रजा का पिता तो बीज ही होगा। जिस बीज को मन की शक्ति में पर से परी कहा जाए उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता मनुष्य। इसलिए मुझे बोला गया है ऐसे ऐसे बच्चे के जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, दिल पर आते थे, टीचर बन करके बैठते थे, तो मम्मा बाबा जैसी सशक्त आत्माओं को भी जो कंट्रोल करने वाली आत्मा यदि ने थी वो जरूर काम थे। क्योंकि जन्मदाता जन्म लेने वाली रचना से ज्यादा पावरफुल होता है और मम्मा बाबा यानी दादा जी महाराज और ओम राजे तो तुम सत्य नहीं शक्ति में जन्म लेने वाले होंगे। शक्ति के पहले दो पत्ते कहे जाएंगे, उनको जन्म देने वाला कोई बीज दूसरा होना चाहिए और वो पावरफुल होना चाहिए। इतना पावरफुल होना चाहिए कि योग बल से सिर्फ अपनी आत्मा को ही पावरफुल न बनाए लेकिन शरीर को भी टेंशन दायक है। योग बल से इतना योगी बनता है। तो ऐसी सतत आत्मा जो राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चों को जन्म देने के निमित्त बने उनमें भी फर्स्ट नंबर आत्मा जो आनंद पार्क में जाने वाली है सत्य रूपी रंग पर शरीर के कारण तो वो ही शक्ति का बीज। वास्तव में ब्रह्मा के तो 50 वर्ष कम हो जाएंगे क्योंकि अभी भी वो अपने शरीर से शक्ति कर रहे हैं, उनका साकार शरीर नहीं है। बड़ा आकार स्टेज में हम बच्चे में प्रवेश करके पाठ बजाते अंतर्वाहक शरीर अर्थात सूक्ष्म आत्मा उनकी प्रवेश करती है अपना शरीर तो अब कठिन नहीं बनेगा। जब कैसे के रूप में जन्म लेंगे तो वो पहला पत्ता होगा। इस मनुष्य शक्ति की उपमा दी जाती है व्यक्ति जिसे कर्तव्य बना दिया व्यक्ति में सबसे पावरफुल चीज होता है या तना फल फूल ये पावरफुल नहीं होते। बीज में ज्यादा शक्ति होती है। जैसे अगले समाज में बोला अहमदाबाद के लिए
Thank you.
बगैर शक्ति रूपी रंग में किसका पूछता ही है, सफल नहीं हो सकता। तो परमात्मा बात को उस बीज रूपात्मा के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा में करते हैं। ब्रह्मा के शास्त्र में करने वाली चीज है, जैसे बच्चा अपने माँ बाप का कैसे धारण कर लेता है, ऐसे ब्रह्मा ने भी अपने माँ बाप का कैसे धारण किया प्रजापिता ब्रह्मा। वास्तव में प्रजापिता और ब्रह्मा का ओरिजिनल पार्ट बनाने वाली आत्मा को दूसरी, जैसे कि बूढ़ा तत्व से रहने वाला ज्ञान में जाती थी, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन कराते डायरेक्शन देते थे, फिर कराते थे शिक्षक बनकर बैठते थे। इसका मतलब है कि ये भी कोई आदमी यदि पिता कोई और था और यदि माता भी कोई और थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, वो सशक्त आत्माएं थी और वो सशक्त आत्माएं जैसे कोई आदमी फाउंडेशन डाल के कर बुद्धिमान की आत्माएं बुद्धिमान बात की बुद्धिमान बच्चे उस समय ज्ञान का दो वचन अन्न देने के कारण वो छोड़ सकती चले बाबा बुद्धदेव जो एक बार ब्राह्मण बन चुका वो दोबारा जरूर ब्राह्मण बनता है। तो उसको बच्चे दो तीन जन्म की आत्मा जन्म मिलेंगे तो उन जन्म की चार से लेकर के फिर दोबारा यज्ञ में आती है और लास्ट को पास जाती है। क्योंकि पहले की हुई उनकी कमाई दूसरे जन्म में ऐड हो जाती है और वो एडवांस पार्टी की आत्माएं पड़ी जाती है। वो ग्रुप को दो चार करने से नहीं यदि की आज से लेकर के मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक फिर आत्मा है जिन्होंने ज्ञान लेने के बाद शरीर छोड़ दिया और वो सारी की आत्मा दोबारा ज्ञान में आती है जन्म ले गई तो वो लास्ट में आने पर भी फांस जाती है। फिर उसका एक कारण होता है दोबारा जन्म लेकर के जब आते हैं तो वो मम्मा बाबा को साकार नेत्रों से नहीं देख पाते, जब देखा ही नहीं है उनकी गोद में ही नहीं गए हैं तो उनको बिंदु याद आएगा या साकार याद आएगा, जरूर बिंदु याद आएगा और बिंदु भी याद करने से वो सूक्ष्म बुद्धि वाले बनेंगे या साकार बुद्धि वाले बनेंगे, सूक्ष्म बुद्धि वाले बच्चे। सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद किया तब याद किया जब से आसक्त तक मम्मा बाबा का माउंट आबू में आना हुआ है क्या और वहां से उन्होंने दुनिया चलाना तो उसकी धारा प्रभा प्राचीन भी करती थी लेकिन वहां उसकी काफी जैसे बच्चों के सामने आ गई ज्ञान परिपक्व स्थिति में पहुंच चुका बेसिक नारी और वो कपी हुई नारी से मम्मा बाबा के शरीर खोलने के बाद जिन बच्चों की बुद्धि में आई वो बच्चे धीरे उनके शरीर में जब उन्होंने तो मम्मा बाबा को न देखा न उनकी बोली तो बोली याद आने का सवाल नहीं मेरे याद आने का सवाल नहीं और बिजली की चेत में पीछे होने के कारण वो सिद्ध गति वाले हो गए लास्ट में आने पर भी पास में आने वाले बन जाए। तो ऐसी आत्मा है और उनका जो बीज है पिता दो संसार में रुद्रमाला के रूप में प्रकट होता है। मुझे बोला रुद्रमाला पहले से गया नहीं है रुद्र की माला फिर उसकी माला लेकिन उसका नाम रुद्र बना क्यों पड़ा सिंह माला क्यों नहीं पड़ा क्योंकि शिव तो बिंदु बना वो बिंदु शुद्ध हिंदू आत्माओं का जो तो बात है, दूसरा कोई संबंध नहीं। हिंदू हिंदू आत्माएं सब आपस में भाई भाई है, भाई भाई के अलावा भाई कहने का भी संबंध नहीं बनता। उस हिंदू से वही सुप्रीम कोर्ट जो उस हिंदू के साकार शरीर में प्रवेश करता है, पांच बजाता है तो अलग अलग नाम करते हैं। उनका पहला नाम है रुद्र, रुद्र माना रौद्र रूप जिसने धारण किया है। यदि कोई आदमी भी रौद्र रूप धारण किया है, इसलिए अगर जमाने में बोला हुआ विनाश वाला सब कुछ भी कोई कौन निमित्त बने, जवाब दिया अगर जमाने ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो यदि कोई आदमी भी विनाश वाला स्थापना के साथ साथ विदित होती है, ये पैरल चलते जितनी दूसरी सकरण की स्थापना होती जाएगी उतना उतना प्रेरक की स्थापना होती जाएगी। है दिल्ली की स्थापना पहले होगी और विनाश पहले बाद में होगा, या विनाश पहले होगा स्थापना बाद में होगी? हाँ, अगर विनाश नहीं होता है तो स्थापना प्रत्यक्ष होने वाली नहीं, क्योंकि स्थापना होनी है मुख्य बल लोगों की और विनाश होना है प्रेर का ही। सारी दुनिया विनाश वाला है, खराब हो जाए कि सूर्य ज्ञान के कुछ भी विनाश वाला प्रतिबिंब होगी, दुनिया के विनाश वाला प्रतिबिंब नहीं होगी। तो पहले पहले एक किसको लगेगा, यदि कुंड के आस पास बैठने वाले कच्चे ब्राह्मणों को पहले ठीक लगेगा ना, जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो तो कच्चे सोने की तरह और भी ज्यादा निखरेंगे, उनकी तो शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी, उनमें खलबली नहीं आ सकती, वो और ही ज्यादा पीछे होते जाएंगे पुरुषार्थ में, जैसे जैसे दिन बाधा आएंगी और वैसे वैसे वो संसार में ज्यादा निखरेंगे। तो सच्चा सोना स्थापन करता है, सोने जैसी आत्माओं का संबंध, बाकी सचिव में कोई सोने के महल नहीं होते, वहां महल बनाने की दरदारी भी नहीं है, वहां कोई देवदार नहीं होता है जिसको छुपाने के लिए महल बनाए गए, वहां कोई सर्दी गर्मी भी नहीं होती है, जो दीवारों के अंदर आदमी रहे वहां मौसम सदा बहा है। जब कोई कारण ही नहीं तो बंद करके आदमी क्यों रहेगा, देवताओं का जीवन मनुष्य जीवन होता है, वहां किसी प्रकार की विमानों की जरूरत नहीं, संरक्षण रुकने के लिए जरूर होती है। उनको सोने के महल कहो, चांदी के महल कहो, हीरो जवाहरातों के महल कहो, लेकिन वो चैतन्य के लिए जवाहरात होते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनके द्वारा शक्ति का बीजा रूपण होता है, वो आदमी भी यदि में तीर्थ और अंत में भी यदि में प्रत्यक्ष होती रुद्रमाला की, जो रुद्रमाला की रुकिया वो ही आगे वाली दो आत्माएं मां और पिता के रूप में प्रत्यक्ष होती, जिनमें परमात्मा शिव पहले पहले प्रवेश करता है। रुद्रमाला के जो मणके है वो है मुख लेने की अंदर उनमें मुख बने हुए होते, कोई मणके में एक मुख के लिए कोई में दो मुख, कोई में चार मुख, कोई में चौदह चौदह मुख भी होते। इसका मतलब कि चौदह मुख से बात करते हैं माने चौदह चौदह आत्माएं भी उनमें प्रवेश हो जाते हैं, लेकिन एक मुख वाला मणका जो है बहुत गहरी होता है और वो कम मिलता है। एक मुख वाला अंदर बाप दादा की तो रूप से निकल सके और अंत में सिर्फ बाप की तो ऐसा मनता वही शक्ति का बीज और उस बीज को भी यहाँ बताया गया मनुष्य शक्ति का बीज, लेकिन वो मनुष्य शक्ति का बीज बनकर प्रत्यक्ष तब होता है जब सुप्रीम को रूप में प्रवेश करे, नहीं तो वो जड़बत है जब है। इसलिए अगर तुम्हारी बताया है कि जब को याद नहीं करना है, किसको याद करना है, शिव को याद करना है। जैसे आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, शरीर के बगैर आत्मा नहीं और आत्मा के बगैर कहीं साइन नहीं कर सकता। ऐसे ही कर्मों के अंत में जब सब चर्चरी मुक्त हो जाते सब मतदा हो जाते सब परमात्मा बाहर आकर के शक्ति मुक्त कर। इसलिए मुसलमान लोग क्या कहते कि कयामत होगी तो अल्लाह आकर के फूक मारेगा। इसमें उनका मतलब है कि जो कब्र दाखिल हुए पड़े वो मिट्टी के पुतलों को जीवित बनाए। जीवित बनाने का मतलब है कि मन बुद्धि से चैतन मनन चिंतन शील बनाएगा। मनन चिंतन शील दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिर्फ जड़ पदार्थों का मनन चिंतन मंथन करने वाले और एक होते हैं आत्मा और परमात्मा का मनन चिंतन मंथन करने वाले। तो जड़ पदार्थों का मनन चिंतन मंथन करने वाले की बुद्धि कैसी बनेगी? जैसे बुद्धि भले कितना भी विकास कर ले ऐसी विधि नदी तैयार कर ले जिससे तात्पर्य का ग्रंथ हो जाए लेकिन निर्माण को नहीं कर सके कंस्ट्रक्शन को नहीं कर सके दुनिया को धीरे नीचे गिरती गई दुनिया में सुख शांति को नहीं बढ़ा सके तो चैतन्य आत्माओं को चैतन्यता प्राप्त कराने का काम बुद्धि सोचता है और वो सबसे पहले जिसमें प्रवेश करता है उसकी बुद्धि को ही चैतन्य बनाता है। इसलिए शास्त्र में गए है कि भारत ने तपस्या की तो गंगा ऊपर से नीचे तो आ गई लेकिन पटरी वासियों का कल्याण नहीं हुआ। क्यों क्यों कल्याण नहीं हुआ? क्योंकि जटाओं में समा गई। अब जटाओं में समाने का क्या मतलब? जटाओं में समाने का मतलब यह है बुद्धि में समा गई मस्तक में समा गई और मन चिंतन मंथन की इससे शुरू होगी। पहली पहली मन चिंतन मंथन की इससे शुरू होती है मन की। मन कहा जाता है आदि ब्रह्मा जिसे आदि देव कहा जाता है सोमान देवा पुरुष है पुराण और मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है जैसे ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण विष्णु की औलाद को वैष्णव ऐसे ही मनु की औलाद ही मनुष्य कहेंगे। लेकिन ब्रह्मों में वास्तव में हम मनुष्य नहीं थे क्योंकि जो मनन चिंतन मंथन की धारा होनी चाहिए वो मनन चिंतन मंथन की धारा हमने नहीं प्राप्त की। बुद्धि और ही जड़ नहीं बनती है सिर्फ इस अंतिम चरण में हम मनु की औलाद बनते हैं मनुष्य और तब कहे जाते हैं मनुष्य जब हमारी मन बुद्धि चलाए मन हो जाए। मन चलाए मन का मतलब चैतन्य मंथन करने वाली बन जाए। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है ये करता जो हमारी बुद्धि को मन की शक्ति न बनाए। एक होती है सदगति और एक होती है सुगति। धर्म सिखाए भी आए बड़े बड़े महात्माएं भी आए लेकिन मनुष्य दुर्गति को पाता गया या सदगति को पाता गया। मनुष्य की बुद्धि देह के चंचल में और विकारों की रमण में गई या मानवीय बुद्धि का उत्थान हुआ? तो भी कहे कि मन की शक्ति मनुष्य बना देह का चिंतन देह जड़ और देह के पदार्थों का चिंतन देह के संबंधियों का चिंतन इससे बुद्धि जड़ तो नहीं बनी दुर्गति हुई। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि की आत्मा जब दुर्गति को प्राप्त हो गई तब परमात्मा अंत में आता है जब पूरी दुर्गति का जन्म लगता है। और आकर के करता क्या है? जो जड़ तुम्हारी बुद्धि दुर्गति को प्राप्त हुई है उसको पहले मन चिंतन मंथन ठीक बनाना। तो ब्राह्मण की दुनिया में भी पहला पहला जो बीज है मन चिंतन की का वो ही पहले तुम्हारे चिंतन मंथन के तेज में आकर गीता ज्ञान तो जरूर है लेकिन वो गीता ज्ञान अगर बुद्धि का भ्रमण नहीं करता गीता ज्ञान सुनने के बावजूद भी अगर देह और देह का चिंतन करता है तो फिर उसको ब्रह्मा की औलाद मनु की औलाद मनुष्य नहीं कहती। मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने मन का उपयोग न करे, मन चिंतनशील न बने, मन और बुद्धि ये परमात्मा की सबसे बड़ी ताकत ब्राह्मणों की दुनिया में था, तो हम ब्राह्मणों के जीवन में पहले संकट होती है जो दूसरे के बच्चे के लिए जाते हैं, जो दूसरे है तो उनके में है, क्योंकि लौट गुरु से जो धारण करता है वो शंकर का नाम है। शंकर का नाम ही है लौट गुरु को विकरान रूप को धारण किया और सकल की शक्ति का विनाश कर दिया। सकरा के लिए मानवीय शक्ति है सकरा क्यों, अगर मन की शक्तिता नहीं है तो जैसे सब है, जैसे सबों को पता समझ करके उठाने से फेंक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, ऐसे ही सारी संस्कृत शक्ति जैसे बच पड़ी, जैसे गीता ने कहा हे अर्जुन ये न मर पड़े तो इनको जीवित न समझ, तो ऐसे ही है। तो मनुष्य शक्ति का बीज रूप है जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, सभी को ऐसा केवल फिर रचना होती है। ऐसा करते हैं अपना बना की आता है कि हमारा बाप है और बाप की दूरी में भी ये बात बैठ जाती है, यही मेरे बच्चे और दुनिया में मेरे कोई बच्चे नहीं, ऐसा साकार नहीं होगी या निराधार में अलग करोगी, साकार नहीं होती ऐसा करने वाला भी साकार चाहिए और ऐसा होने वाले भी साकार चाहिए, ब्राह्मण है ही साकार। जब ब्राह्मण साकार है तो ब्राह्मणों के मात पिता भी साकार ही चाहिए, तो पहले वह माँ बाप के घर जन्म लेती है बच्चे। जन्म लेने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ तो बाप का बीजे भी जन्म और बच्चों का भी बीजे, बाप अकेला इस शक्ति पर नहीं आता, बाप आता है तो साथ साथ बच्चों का भी जन्म होता है, त्रिमूर्ति जो साथ में ही होती है, बाप अकेला नहीं आता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आते उनका भी जन्म साथ करता है माता के द्वारा। जो बाबा कहते हैं मैं भी उनको एडाप्ट करता हूँ, वो है उनको मैं सावधि इनको एडाप्ट करता हूँ। वंशावली का मतलब क्या हुआ, अब वो है दुख वंशावली, दुख वंशावली माने जो को याद करते, बाहर की दुनिया वालों की बात नहीं है, हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो ब्रह्मा की गोद को याद करते हैं, ब्रह्मा के शरीर को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत के वरिष्ठ वर्षिला बाबा के पितरों को रखते ब्रह्मा को चित्र रखने के लिए बुद्धि का मना किया हुआ, फिर भी चित्र रखते हैं फिर तो उनको वो गोद याद आती, फिर भी याद आती, उसके बगैर वो याद में टिक नहीं सकते, इसलिए वो उसको बनता है, क्योंकि देह का चिंतन ज्यादा होता है और जिसका चिंतन होना चाहिए वो चिंतन कम होता है। और मुखवंशावली कौन है, जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को ज्यादा याद करती, उन्हें साकार देह याद नहीं आती लेकिन परमात्मा के महावाक्यों का मन चिंतन मात्र ज्यादा करती, बोली से प्यार माना बोली से रखे प्यार, ऐसे विचार देह से प्यार, तो मुरली से जिनका प्यार है परमात्मा की वाणी से जिनका प्यार है वो ही परमात्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे, तो ही मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों के द्वारा फिर नई शक्ति की शुरुआत का कार्य संपन्न होता है। लेकिन बताया कि ब्रह्मा मेरी स्त्री है, कैसी स्त्री है, मुरली ने तो बोला कि मैं जो भी हूं मेरा नाम सिर, मेरा नाम कभी बदलता ही नहीं, बिंदु बिंदु आत्मा है सब मेरे बच्चे, आपस में दो भाई भाई, दूसरा को संबंध बनता ही, जब दूसरा संबंध नहीं बनता है मैं कह सकती कि माता पहले की पिता पहले, क्योंकि बच्चे के लिए ये कहना संभव नहीं है कि माता पिता ने बीजा रोपण की प्रक्रिया पहले कितने की बात नहीं रही। नहीं, दोनों साथ दोनों के पहले शक्ति की निर्माण प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती, तो दोनों थे, माता भी थी और पिता भी। एक ने समझने समझाने का कार्य किया, माने बीज ज्ञान का कार्य का कार्य किया, और माता ने सुनने सुनाने का कार्य किया, माना भक्ति का फाउंडेशन माता और ज्ञान का फाउंडेशन पिता। तो माता हो गई श्रीमद् भगवत गीता, गीता माता और उसका गीता पति भगवान मुख से प्रजा पिता के रूप में परमात्मा थे। और बच्चा जिसने माता पिता का बाद में कैसी कार्य की, पहले माता का कार्य किया, प्यार दिया बच्चों को, देर के देर रहा बच्चों को जन्म दिया, और लास्ट में आकर में आकर के प्रजापिता का कार्य किया। जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तब, यानी ब्रह्मा बाबा को उस प्रजापिता की वैल्यू का तब तक पता नहीं पड़ा जब तक मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ दिया। मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा को पता चला कि यज्ञ में विद्युति में बड़े पड़े, फिर वह ब्रह्मा के हाथ को कितनी तकलीफ पहुंचाई जो हाथ से हुई। तो 3 वर्षों के अंदर 65, 66, 67, 68 ब्रह्मा बाबा को पूरी अनुभूति हो गई कि यदि प्याज में अगर कोई वीरो आत्माएं थी तो वही आने वाली आदमी दोष, इसलिए प्रजापिता की बात संख्याकट से लेकर के बाबा ने बच्चों के सामने आगे और बताया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के राम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहना चाहिए। तुम बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, किरण को पूछेगा तुम किसके बच्चे हो, तो कहो कि हम अम्मा के बच्चे हैं। अगर तुम बच्चे अपनी माँ का परिचय दे और बाप का परिचय न दे तो दुनिया में ऐसा नहीं कहा जाता। तो तुम बताओ क्या प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, किसको ब्रह्मा कुमार नहीं, माँ के बच्चे नहीं, हम माँ के पिता दोनों के बच्चे। इसलिए मुझे वो बोला और ब्राह्मणों से जाकर के पूछो तुम्हारा ब्रह्मा पाप को, तो क्या जवाब देंगे? दुनिया की ब्रह्मा ब्राह्मण जो है वो तो कहते ही है पहले कभी हुआ था कर्म, वो तो आप कुछ मतलब बाकी है, लेकिन ब्राह्मणों की कर्म भी कितना जैसे हो रही थी होने लगी क्या? तो उनसे पूछो कि तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, ब्राह्मण कहते हो और सच्चे ब्राह्मण कहते हो, तो सच्चे ब्राह्मण कब हुए? कर्म युग हुए ना, तो तुम्हारा ब्रह्मा पाप कहाँ है? तो ब्राह्मण साकार में तुम यहाँ पैदा हो गए, तुम्हारा ब्रह्मा पाप कुछ पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे ने तो बोला हुआ प्रजापिता कुछ मतलब आज नहीं हो सकता। प्रजापिता का काम है जब तक सारी प्रजा का कल्याण न हो जाए तब तक वो ऊपर नहीं जा सकता। 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति की प्रजा है, वो सारी मनुष्य शक्ति की प्रजा का कल्याण करना कुछ एक बात कहेगा जिसका सुख उसको प्रवेश करता है पहले पहले वो सर्व का सदगति दाता राम कहा जाता है। ऐसे कहीं नहीं सुना होगा मुरली में भी नहीं और शास्त्रों में भी नहीं कि सर्व का सदगति दाता कृष्ण, सर्व का सदगति दाता ब्रह्मा, या सर्व का सदगति दाता नारायण, या सर्व का सदगति दाता शिव, नहीं। क्या कहेंगे? सर्व का सदगति दाता राम। इससे साबित क्या हूँ? राम का मतलब ये नहीं है कि कोई त्रेता वाला राम, नहीं, वही त्रेता वाली राम की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती आती कभी के अंत में कोई साधारण मनुष्य तनधारी बनती है जिसमें परमात्मा ज्ञान पूरी प्रत्यक्ष होता है। संसार के काम गुप्त नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है, और प्रत्यक्ष पहले बच्चों के सामने ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या बाहर की दुनिया में होगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में बात प्रत्यक्ष है। तो बताया कि ये ब्रह्मा देवी की स्त्री है, परम सुख जोड़ा तो पुरुष का है, ये तो कहा दीजिएगा दादा विश्वासी ने टाइट भारी दी, ये जोड़ा तो पुरुष का है, मैं इनको एडाप्ट करता हूँ। जब पुरुष का जोड़ा है तो तुमने एडाप्ट क्यों करिए इसको, जब पुरुष का जोड़ा है तो तुमने एडाप्ट क्यों करिए इसको, जब स्त्री का जोड़ा ही नहीं है तो एडाप्ट क्यों किया, के रूप से तुमको जन्म देता हूँ, ब्रह्मा के रूप से तुमको जन्म देता हूँ, जो बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु जो बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है तुम कैसे हो मात पिता, मैं नहीं कहता तुम कैसे हो मात पिता, किसको कैसे हुआ तो मेरा काम कैसे हो सकती, जो बिंदु सुप्रीम सोल है वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का पाप है, उसको माता नहीं कहा जा सकता, इसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए समझने क्या कि वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती हमारे माता पिता नहीं है, सरस्वती तो उनकी ज्ञान की बेटी थी, पाप और बेटी को कहीं माता पिता का समझ लिया जा सकता है, और माता पिता आदि में होंगे या मध्य में होंगे, सरस्वती तो मध्य में आई और मध्य में चली गई, सरस्वती नदी का भक्ति मार्ग में भी यात्रा क्या दिखाते मध्य में आई और मध्य में ही पुष्ट हो गई, और प्रैक्टिकल में भी हम उसकी दुनिया में ऐसा ही तो उसको आज माता कैसे कहेंगे, आज शक्ति कैसे कहेंगे, सरस्वती को आज शक्ति नहीं कहा जाता, जैसे शक्ति की आत्मा ने दैसे धारण किया बच्चे ने अपने माँ बाप का दैसे धारण किया, वैसे सरस्वती बच्ची भी माँ बाप का दैसे धारण करती है, सरस्वती जगदम्बा बस ओरिजिनल में वो जगदम्बा नहीं है, सब ब्राह्मणों की माँ नहीं कही जा सकती, सब ब्राह्मणों की माँ का तो वही थी जो ब्रह्मा सरस्वती को भी कंट्रोल करती, तो बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वो प्रीत कैसे करे, क्या बिंदु से क्रिएट करेगा, घड़ा को क्रिएट करने वाला कुमार घड़ा को साका और कुमार वो भी तो साका होना चाहिए, निराला कैसे बिंदु कैसे क्रिएट करेगा, क्रिएट कोई आत्मा नहीं की जाती, आत्मा तो अगर हमारा विनाश है उनको क्रिएट करने की बात नहीं है, ब्राह्मण को क्रिएट किया जाता है, तो ब्राह्मण को क्रिएट करने वाला क्रिएटर भी साकार में चाहिए और क्रिएशन भी साकार में चाहिए, क्रिएटर सुप्रीम सोर्स ज्योति बिंदु शिव को नहीं चाहिए, वो सुप्रीम ज्योति बिंदु शिव जब साकार में प्रवेश करता है तब क्रिएटर बनता है, पहले पहले रहता है स्त्री को माता को, तो बताए क्रिएट कैसे करें, जगदम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं वो तो ब्रह्मा की बेटी को मान समझ नहीं जाती, अब माता उनको कहें और उनको कहें किसको कहें, सरस्वती को माता कहें या ब्रह्मा को माता कहें किसको कहें, मूल व्यक्ति में ये माता है तो ब्रह्मा, परंतु ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर बोला हुआ परंतु स्त्री चोला है, ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है परंतु चोला पुरुष है, किसकी पूजा नहीं हो सकती, माता की भारत माता शिक्षक की अवतार ब्रह्मा को विष्णु वैष्णो देवी के रूप में ये माता की स्त्री की पूजा नहीं हो सकती, सारी मुझे पुरुष सारी मुझे संस्कार मुक्ति में बताए तो ब्रह्मा भी कौन था, उसकी लिस्ट में था ना, तो भारतीय परंपरा में उसकी पूजा कैसे होगी, कोई मंदिर नहीं कोई मूर्ति नहीं, जो मंदिर है भी उसमें पूजा नहीं होती हो, सिर्फ यादगार मात्र है तो तन पुरुष का है, मूल यही है यह माता है परंतु तन पुरुष का है, तो पग लगा दू पर अगर मगर जी जैसे पग लगाती है ना, तन पुरुष का है तो माताओं के चार में उनको कैसे रखा जाए, देखो ब्रह्म जन्म लंबा जन्म से बनी हुई हमारे सरस्वती को जिले से बना दिया कन्या माताओं की समाज की उम्र वास्तव में सरस्वती भी माता नहीं ऊपर ही बता दिया और ब्रह्मा भी माता नहीं है। बात कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको अटैक करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने ईश्वर हमारा दादा है। ये बात शास्त्रों में कुछ भी नहीं ये मैं ही जाए समझा सकता हूँ और कोई बता नहीं सकता। ये सब है भक्ति मार्ग के खिलौने खिलौने से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। टाइम स्टेशन है बाप से वर्षा नहीं तो बाप अगर दस व्यक्ति होगा तो वर्षा कैसे मिलेगा। एक व्यक्ति होगा तो वर्षा मिलेगा या सर्व व्यक्ति होगा तो वर्षा मिलेगा। सर्व व्यक्ति होगा जिसका मतलब भाई भाई को वर्षा मिलेगा आत्मा में परमात्मा हो जाएगा क्या तो शांति का वर्षा सिवाय पर पिता परमात्मा से कुछ दे नहीं सकता। सर व्यक्ति कहने से किसका को होता मीठा नहीं होता। सारी दुनिया में ये सब व्यक्ति का ज्ञान इतना है जो बच्चे हैं दोनों की बुद्धि में हमारी याद है क्या कहा माना बच्चे कौन है जो सर व्यक्ति कहते हैं वो जो एक व्यक्ति कहते हैं अगर एक व्यक्ति कहते हैं तो उनसे पता ना उनसे पूछना पड़े पर पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है अब ब्रह्मा का साकार होता है या बिंदु जब संबंध है तो समान बंधन को ही संबंध कहा जाता है। समान संपूर्ण समान समान या तो संपूर्ण बंधन है या समान बंधन है। संबंध तभी स्थायी रहता है जबकि समानता हो एकदम मल्टी मिलियन आए हो और एक है तो संबंध टिके नहीं चलो बुद्धू बना दिया पूरे समय के लिए लेकिन वो स्थायी नहीं रह सकता। तो संबंध है वो पूछना पड़े ये प्रश्न अगर सकाओ पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा कौन लगता है पिता लगता है। तो जब पिता लगता है तो मनुष्य सृष्टि में होना चाहिए सारी मनुष्य सृष्टि का पिता तो इसी मनुष्य सृष्टि पर होना चाहिए ना मुख्य मतलब में कैसे होगा तुम्हें बताए सबको बताए। इस समय जो बच्चे हैं दोनों तीन सूची में हमारी याद है क्या जो सरल जाति कहते हैं मेरे बच्चे ही नहीं है दोनों की बुद्धि में मेरी याद रह नहीं सकती
सके।
जो लौकिक में बच्चे होते हैं वो पाप को याद करते रहते हैं उनकी बुद्धि में याद ठहर जाती है और इस पाप को ही जो भूल जाते हैं पाप में बच्चे को याद करती बच्चा अपनी माँ को याद करता है और यहाँ बच्चे जो भूल जाते हैं कारण क्या है कि प्रैक्टिकल संबंध जो होना चाहिए वो नहीं है। सिर्फ कहते हैं बाप आया हुआ है बाप आया हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल बाप कौन है क्या है कैसे ऐसी जाती है वो अभी बुद्धि में बैठा बैठा तो जब तक बैठा नहीं है वो प्रीति पैदा नहीं हो सकती। प्रीति पैदा होने के लिए आत्मा को साकार बनना पड़ेगा और साकार से ही प्रीति होती है। निराकार की प्रीति ये तो विदेशियों की प्रीति है प्रवृत्ति मार्ग की प्रीति है साक्ष्य प्रसाद तो प्रवृत्ति मार्ग की भारत में निराकार और साकार दोनों की मान्यता है। सगुण या गुण ही नहीं कुछ भेजा सुबह जाने बहुत संभव हो जाए चाहे निराकार को याद करे चाहे साकार को याद करे लेकिन है तो वो एक कैसे एक है निराकार को बिंदु को कहते लेकिन नहीं निराकार बिंदु को नहीं कहा जाता। अगर निराकार से तो बिंदु को कहा जाए तो बिंदु का चित्र नहीं खींच सकता कोई बिंदु का चित्र खींचा नहीं सकता मूर्ति बनाई नहीं सकती नहीं शिवलिंग खींची अगर शिवलिंग भी वास्तव में साकार में निराकार की प्रवेश किया जो सोमनाथ का चित्र बना हुआ था शिवलिंग उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है बिंदु के रूप में वो परमात्मा शिव की प्रवेश किया अंदर और जो लिंग है वो निराकार किया अंदर कैसे निराकार साकार शरीर में होते हुए भी उसको अपनी कर्मेंद्रियों का अंत नहीं है इस बात को चित्रकार ने चित्रित किया
कैसे करेंगे आप होते हुए भी हाजी जैसे आप बच्चों को बाबा डायरेक्ट में देते सुनते हुए न सुन देखते हुए न देखो तो जैसे कि नाक आँख और कान है जी तो निराकारी की याद को दिखाई रखने के लिए कि वो कैसे निराकारी देश में दिखने वाला है दिखने वाला था वो दिखाने के लिए चित्रता ने चित्र किया मानस लिंग जो है वो शरीर की याद है जो निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है उसको दिखाया गया लिंग रूप में और उसमें बिंदु है परमात्मा सिंह की प्रवेशता किया गया वो परमात्मा सिंह के बगैर बिंदु कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बगैर परमात्मा सिंह कुछ नहीं कर सकता जैसे आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता तो ऐसे यहाँ दोनों का तारतम्य है दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ये भी प्रवृत्ति है प्रवृत्ति के बगैर नहीं मन से सीख लेते नहीं हो सकती तो जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है कैसी याद निरंतर याद और सहज याद ये सहज याद और निरंतर याद तब तक नहीं हो सकती जब तक कि परमात्मा के अग्नि स्वरूप मैं जो हूँ कहता हूँ और जिस रूप में पाठ बजाता हूँ पाठ करके समझ में बजाता हूँ पाठ से मतलब बजाया जाता है क्या कि साकार में बोलो रूपी रंगमंच में बजाया जाता है तो मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ उसको बहुत भिन्न बच्चे हैं जो पैदा पाए इसलिए बोला है वो तो में से कोई और कोई में से भी कोई का चुनाव होता है ये प्रक्रिया दो बार होती है बेसिक नाली और एडवांस नाली उच्च शिक्षा ईश्वरी ज्ञान की भी ये दो प्रक्रिया हैं इसलिए मुझे बोला था तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा जब क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर भी चेंज हो जाता है दोनों में प्रतिक्रिया में सर दिया भी सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं पर अब जानते नहीं तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया देवदेव को नाग बना दिया है ज्यादा देवला क्या करता है सर्पों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको बना दिया सर खुद ही सर्प है और सर्प ही सर्प है अब बात कहते हैं मेरे को याद करो और कोई सर्प सर्प को याद करो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्व व्यापी तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती बाबा को याद करती है क्या सर्प को याद करती है या सर्पों का खंडन करने वाले को याद करती है सर्व व्यापी अक्षर में बड़ा भारी फर्क हो गया ये भी जाना में भारी फिर भी ऐसे ही होगा और होना ही है ज्यादा फिर भी ऐसे ही होगा मान भक्ति मार्ग में प्रेषण जन्म तो हुआ ही और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरी पीढ़ा चल रहा है इसमें भी ऐसे ही हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है हमारी आत्मा में परमात्मा की प्रवेशता है हमारी आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हुए हमें पूरी अनुभूति होती है कि बाबा क्या कहते हैं बाबा के डायरेक्शन हमारे द्वारा निकलते हैं लेकिन ऐसा नहीं ऐसे अगर सब कहने लग पड़े देखो परमात्मा सर्वव्यापी हुआ ना वास्तव में परमात्मा को सर्वव्यापी होकर के हर एक के मन के अंदर उसको प्रेरणा नहीं देता है मुझे में बोला हुआ मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता अगर प्रेरणा से ही प्रतिस्थापन हो जाए तो परमात्मा बाप को स्थिति बनाने की क्या दरकार फिर तो प्रेरणा से ही ऊपर प्रतिष्ठा है इसलिए दो बातें हैं एक है ज्ञान सुनाना और दूसरा है जो मुख्य है आप कहते हैं परमात्मा के आने का पंडितों को परमात्मा से ज्ञान सुनाने आता है क्या अगर ज्ञान सुनाने ही आता होता तो भक्ति मार्ग में गाइड करता ये परमात्मा आओ और हमको ज्ञान सुना के चले जाओ लेकिन है कि कोई बात नहीं कैसे क्या ये पंडित पावन आओ आकर हमको और पावन बताओ ज्ञान सुना करके गया ऐसा समझ लेते वास्तव में वो अपना कार्य संपन्न करके नहीं गया इसलिए अगर सब pengetahuan. Pengetahuan itu berempat jalan dia. Bapak jalan dia. Jalan dia. Bukan Tuhan janji awal mulia. Mereka itu bercokok. Tak boleh jadi jawab. Orang itu di mana awal jahat di situ. Tak boleh jadi jawab mana di situ. Saya tak jadi jawab awal itu. Jahat. Aku nak jahat ini. Mas, nenek saya bercakap dengan jawab. Nenek saya bercakap dengan jawab. Nenek saya bercakap dengan jawab. Ini adalah yang dikongsi